कंपनी में देख रहे हैं सदाव्रत सारंगा के बारे में भाग छह में। भाग पांच में आप लोगों ने देखा कि वो सदाव्रत को तो दानी पकड़ के ले जाता है और सारंगा उधर जादूगरनी लड़की के पास में है। तो जादूगरनी लड़की जो है वो कहने लगी, बहन तू चिंता मत कर, हम तुम्हारे पति को तुमसे जरूर मिलाएंगे। और सारंगा को आश्वासन देने के बाद में वो तो वहां से चली जाती है और सारंगा को इधर बड़ी तेजी से प्यास लगी है। प्यास के कारण इसकी जान जा रही है, सोचने लगी क्या करें क्या न करें, हमें किस जगह पर पानी मिले, हम कहां जाएं अगर हम यहां से जाते हैं, वो जादूगरनी लड़की हमें यहां बिठा के गई है, अगर हम यहां से चले गए वो हमारे पति को ढूंढ करके लाई तो फिर वो हमें कहां ढूंढेगी, और अगर हमें पानी नहीं मिला तो हमारी जान चली जाएगी। तो सारंगा उस वृक्ष के नीचे बैठ करके सोच रही है, समझ में नहीं आता कि हम क्या करें।
बहुत देर पति को भाई अरे परमेश्वर जाने किनने लिए बिलमाई जी, अरे बहुत देर चले गई, मेरी तो समझ में नहीं आता है, बहुत सारा समय लगा दिया है अभी तक लौट कर नहीं आई।
हाँ दोस्तों, सारंगा जो है वो रो रही है, पछता रही है, क्या करें क्या ना करें। अरे इतनी कई रो बन लगी अरे सारंग लगी, अब क्या करें, अब तो मेरी समझ में नहीं आता है। अरे दानी के हाथ से नहीं बची अरे परमेश्वर, अरे दानी के हाथ से नहीं बची अरे परमेश्वर, कोई ले नो चीखी
बचा ले मेरे कंठ को यारे मेरी बहना।
जाती है। उस जादूगर ने लड़की से एक बात कही है कि ऐसा करो तुम हमारे पति को बचा लो, उसके बाद में तुम चाहे शादी कर लेना, लेकिन हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम मेरे पति को किसी भी प्रकार से बचा लो। तो वो जादूगर ने लड़की कहने लगी कोई बात नहीं, तुम यहां बैठो, हम जा रहे हैं। सारंगा को बिठाने के बाद में वो लड़की फिर से चली जाती है और उस दानी के पास में जैसे ही पहुंची है और दानी ने जैसे ही देखा बड़ा खुश हुआ, सोचने लगा है एक तो हमारे पास में था और ये दूसरी सुंदरी भी आ गई, ये बहुत अच्छा रहा। जादूगरनी लड़की को जैसे ही देखा है उस दानी ने,
सो की दिल में प्यारी ले चले तो को संगरे बनाए के राखे नारी,
जैसे ही उस जादूगरनी लड़की को देखा तो दानी हंसने लगा बाजी बा, अरे एक तो हमारे पास में था तुम भी आ गई,
जाको तो खाना को बेचा रहा तो लेकिन अब हम तुम्हें धोर गए।
खिल खिलाई के हसो रूप तेरे बसो की दिल में प्यारी है, दिल में प्यारी ले चले तो को संगरे बनाए के राखे ना, जादू दो चलाई सुनो चितलाई सभी नर नारी, तब बादानी के पीछे पड़ी गई नारी। जैसे ही वो दानी हंसने लगा और तुरंत ही उस जादूगरनी लड़की ने जादू चला दिया और उस जादूगरनी लड़की के सामने उसकी कोई पेश नहीं गई, तो हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया, जवाब दिया बहन हमें माफ कर देना, हमारे हृदय में कैसे विचार बनी गए आपके प्रति, अब हमें माफ कर दो, अब हमें छोड़ दो। तो वो जादूगरनी लड़की कहने लगी हम तुम्हें छोड़ तो देंगे लेकिन हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे, फिर कैसे छोड़ोगी। तो वो जादूगरनी लड़की समझाती हुई बोली है
राती राती जा
सुंदर महल बनाओ तब हम तुम्हें छोड़ेंगे, वैसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन हुआ ऐसा कि उस दानी ने जादूगरनी कहने के अनुसार बड़े सुंदर महल बनाए, हीरे जवाहरात भरे, हाथी घोड़ा रथ पहरेदार, और सदा ब्रज को भी छुड़वा लिया है उस दानी से। अब हुआ ऐसा कि सदा ब्रज तो वहां राजा बन के रहने लगे और जो जादूगरनी लड़की थी वो रानी बन के रहने लगी, क्योंकि उस जादूगरनी ने सदा ब्रज से झूठ बोल दिया कि सारंगा तो मारी गई, और वो रानी बन के रह रही है, वो राजा बन के रह रहे हैं, और इधर सारंगा उधर सोच रही है अब हम क्या करें क्या न करें, अपने पति को कहां ढूंढें। वहां से उठ के भागी, कुछ पक्षी उड़ते हुए उसे दिखाई दिए तो उसी तरफ भागी है, भागती हुई जा रही है, और भागते भागते सारंगा जो थी उसी बगीचे में पहुंची है, और जब बगीचे में पहुंची है उसके अंदर जब गई तो उसने क्या देखा है कि बड़े सुंदर महल बने हैं, पहरेदार खड़े हैं, और जब पहरेदारों को खड़े हुए देखा तो वहां से लौट के फिर चली। लेकिन जो वो बुढ़िया जो मिली थी सारंगा को, और बहे बुढ़िया बाई बगीचा में मिली, अब वो बुढ़िया ने पहचान लो, जैसे ही बुढ़िया ने पहचानो तो अपने नजदीक बिठाओ जवाब दो लली तुम, अब सारंगा ने भी पहचान लिया, तो सारंगा रोती हुई बोली है मां हमारा सारा जीवन रोते ही चला गया, लेकिन हमारे पति हमें नहीं मिल सके, समझ में नहीं आता है कि हमारे पति कहाँ है, और इस बगीचे में तो ये एक महल बना है। तो वो बुढ़िया समझाती हुई बोली है बेटी ये इस जगह पर एक जादूगरनी लड़की है, उसी की करामात है, ये रात ही रात में महल बन गया, और यहाँ पर वो रानी बन के रह रही है, एक बड़ा सुंदर लड़का है वो राजा बन के रह रहा है। तो सारंगा ने ये सोचा हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि हमारे सदाव्रज ही हैं, क्योंकि वो जादूगरनी लड़की जो थी वो हमारे पति के पीछे पड़ी हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे सदाव्रज को उसने अपने कब्जे में कर लिया हो। और तुरंत ही सारंगा वहां से चली, पहरेदार के सामने पहुंची है, और हाथ जोड़ करके एक बात कही है, भैया तुम हमें एक बात बताओ।
भैया
हाँ?
क्या हमें तुम अंदर जाने दोगे या नहीं?
क्यों, अरे तुम अंदर जाना क्यों चाहती हो, क्या काम है तुम्हें अंदर?
देखो भैया, जो यहाँ के राजा हैं वो हमारे पति हैं।
मूर्खता सुनी तो थी लेकिन देखी पहली बार है। एक महाराज को अपनी पहुंच यानी अपने आप को वहां तक पहुंचाने के लिए तुमने अपने आप को उनकी रानी बता दिया। अरे गरीब हो तो क्या, आखिर को पति जो तुम्हारा है उसे अपना मानो, और ये सूर्य की तरफ देखने से सूर्य तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम अपने घर जाओ, या तो तुम्हें दिमाग कम है या तुम बहुत ज्यादा लोभी हो।
नहीं नहीं भैया, मैं सच बोल रही हूँ,
मैं सच को पहचानता हूँ, नौकरी हमारी बहुत हो चुकी है, और महाराज के दरबार पर यहाँ ड्यूटी करता हूँ और मेहनत करता हूँ, अच्छी तरह पहचानता हूँ कि कौन सत्य बोलता है कौन असत्य बोलता है। तुम हमारे यहाँ नौकरानी जो है उन कैसे वस्त्र नहीं तुम पे, नौकरानियों कैसे आभूषण नहीं, राजाओं कैसी कोई वार्तालाप नहीं, राजाओं घरानों कैसा कोई चेहरा नहीं, और तुम अपने आप को रानी बता रही हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए, यहाँ से चली जाओ।
नहीं नहीं भैया, ऐसा करो ये फाटक आद को खोलो, मुझे अंदर जाना है, मुझे अपने पति से मिलना है। भैया
मैं समझ गया, अंदर जो राजा साहब हैं वो आपके पति हैं, ये बात सत्य नहीं है, सत्य ये है कि आपको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। अंदर जो महाराज हैं वो एक राजा हैं, उनके एक महारानी है, और तुम जैसी नौकरानियां यहां पर हजारों रोज आती हैं और जाती हैं, इससे मुझे क्रोध बढ़ा है, उससे पहले आप यहां से चली जाइए।
नहीं नहीं भैया,
खबरदार जो आगे कदम बढ़ाया।
मैं तुमसे निवेदन करती हूं भैया,
उठाकर फेंक दूंगा अगर आगे बढ़ने की कोशिश की।
मुझे मेरे पति से मिला दो भैया।
चली आई, पति से मिला दो, पति से मिला दो।
हाँ दोस्तों, सारंगा को जब उस पहरेदार ने नहीं घुसने दिया है अंदर, तो सारंगा रोती हुई वहां से चली है, सोचने लगी अब हम क्या करें, और उस बुढ़िया के पास में जब वो पहुंची है, लेकिन अरे आस छोड़ी रे सारा। रही है, वह क्या करे क्या नहीं करे मेरी तो समझ में नहीं आता है। सोचा ऋषदेव शास्त्री जी, अरे सौरंगा सोच रही है, अरे तू खुली खोरे मेरे कदम मेरे परमेश्वर होए परमेश्वर मेरे, अरे तू खुली खोरे मेरे कदम मेरे परमेश्वर होए परमेश्वर मेरे, कोई सुख भोग है कोई किया सारंगा ने। जादूगरनी लड़की को तरस आया, दासी के हाथों से भोजन भिजवा दिया है और दासी वो भोजन का थाल लेके सामने पहुंची है। जवाब दिया, बहन ये भोजन कर लो। सारंगा कहने लगी, बहन ये भोजन कहां से लेके आई हो? जवाब दिया, हमारी जो महारानी है उन्होंने तुम्हारे लिए ये भोजन भिजवाया है, तुम भोजन कर लो। सारंगा ने भोजन की थाली अपने पास में रख ली है लेकिन भोजन को नहीं किया, सदाव्रज की याद में ही रो रही है। और उधर सदाव्रज सोच रहा है, हम क्या करें क्या न करें, अरे इस जादूगरनी लड़की के चक्कर में पड़ गए और हमारी पत्नी सारंगा खत्म नहीं हुई बल्कि इसने हमसे झूठ बोल दिया है, अब हम कहां जाएं? और हमें तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि सारंगा भी अब हमें छोड़ करके चली गई। इधर सारंगा सोच रही है कि उस जादूगरनी लड़की के पीछे सदाव्रज ने हमको छोड़ दिया, और उधर सदाव्रज सोच रहा है कि सारंगा ने हमको छोड़ दिया। लेकिन एक दूसरे की याद करके सदाव्रज जो है वो उधर महलों में रो रहा है और सारंगा इधर बगीचे में रो रही है, विलाप कर रहे हैं।
मैंने जिसे अपना बनाया और उसी ने हमें ठुकरा दिया,
सपना।
Thank you.
हे महाराज, मैं जब से तुम्हारे साथ में आई हूँ उसी दिन से दिन प्रतिदिन तुम्हारा चेहरा मुरझाता जाता है। पता नहीं इस उदासी का क्या कारण है, मैं आज जानना चाहती हूँ। आखिरकार के लिए कारण जो भी है वो मुझे बता दीजिए।
हम तुम्हें बताएं, यहाँ हम राजा बन के रह रहे हैं, अनेकों नौकर हैं, बहुत सारा धन माल भरा हुआ है, लेकिन इसमें हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता है, क्योंकि मैं सारंगा के बिना जीवित नहीं रह सकता हूं। उसकी हमें याद हमेशा आती रहती है और मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूं।
अच्छा, उदासी का ये कारण है तुम्हारा, तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे और हम तुम्हारी पत्नी के बीच में दीवार बनना नहीं चाहती हूँ। आज ही हम तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को जाकर के मिला दूंगी।
इसका मतलब ये है कि आप हमारी सारंगा को जानती हैं, वो कहाँ रहती है, कहाँ पर है?
हाँ महाराज, मैं जानती हूँ।
मेरे भैया, जादूगरनी लड़की ने जब ये कहा है कि चलो हम तुम्हें तुम्हारी पत्नी से मिलाते हैं, और जादूगरनी लड़की जो थी, अरे हाथ पकड़ के चली दाई, अरे मेरे दादा, कोई कई बगिया के बीच दी,
अरे हाथ पकड़ के चली दाई, अरे मेरे दादा, कोई कई बगिया के बीच दी।
जादूगरनी लड़की जैसे ही सदा ब्रज का हाथ पकड़ के चली और महलों से निकल करके उस बगिया के बीच में पहुंची, सारंगा के पास में जैसे ही पहुंची है, लेकिन सारंगा ने जैसे ही सदा ब्रज को अपनी तरफ आता हुआ देखा, सारंगा बैठी है, और सारंगा ने वो जादूगरनी लड़की और सदाव्रज को अपनी तरफ आता हुआ देखा तो पीठ को फेर करके बैठ गई। तो सदाव्रज पूछने लगा है,
सारंगा, तुमने हमें देख करके अपनी पीठ हमारे तरफ कर ली, मुंह को फेर लिया, क्या बात है?
अरे तुम मुझे ये बताओ, मैं पीठ न घुमा लेती फिर क्या करती? एक तुम्हारे साथ में ये नारी, फिर मेरी क्या जरूरत है? मेरी सारी जिंदगी बीत गई तुम्हारे प्रेम के पीछे, तुम्हारे पीछे मैंने घर परिवार आदि सभी छोड़ दिया है, लेकिन तुम अपने नहीं हुए।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सारंगा।
सदाव्रज, मैं तुम्हें पहचान गई हूं, जानती हूं। अब तुम पहले मुझे ये बताओ, ये नारी कौन है?
तुमने नहीं पहचाना? गौर से देखो ना।
अच्छा तो ये वही लड़की है जादूगरनी?
बिल्कुल बिल्कुल। ये वही जादूगरनी है। खैर हम राजा रानी बन के रह तो रहे हैं, प्रजा के लोगों को ये भी मालूम है कि ये राजा और रानी हैं, लेकिन हम दोनों राजा रानी नहीं है।
क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता है? मैं जो दृश्य देख रही हूँ उससे मुझे पता चलता है कि तुम राजा हो और वो रानी है, लेकिन नहीं। सुनो बहन।
नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने तुमसे कहा नहीं हम राजा रानी नहीं है। आप ही क्यों नहीं बताती हैं ने? क्या हम और तुम राजा रानी हैं?
है बहन, तुम जो सोच रही हो ये बिल्कुल गलत है। तुम्हारे पति जिस तरीका से गंगा जल का पानी पवित्र होता है उसी तरीका से तुम्हारे पति पवित्र हैं, और आज हम तुम्हारे पति को तुम्हारे पास में तुम्हें दोनों को मिलाने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि तुम बरसों से बिछड़ी हुई, आज हम तुम्हें मिलाने के लिए आई हूँ।
नहीं नहीं सुनिए, यदि हमारे जीवन में खुशियां होती और यदि मैं सदा वृक्ष को पा लेती, यदि मुझे वो मिल जाती तो फिर ये सब कुछ मुझे नहीं देखना पड़ता। लेकिन बहन मैं तुम्हारे बीच में, अब तुम्हारी खुशियां देखकर मैं बहुत खुशी हूँ। मैं तुम्हारे बीच में बाधा डालने वाली नहीं हूँ। नहीं बहन।
हे बहन मेरी बात मानिए और तुम अपने पति को स्वीकार कर लीजिए। तुम्हारे पति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो तुम सोच रही हो। मैं तुम्हारे पति को आज वापस करने के लिए आए हैं, और अपनी अमानत को आप स्वीकार कर लीजिए।
सदाब्रज।
हाँ हाँ बोलो।
इसमें आपकी क्या राय है?
वो जो कह रही है वो बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। अभी तक ये कुछ भी हमारे तुम्हारे साथ में करती नहीं, उसे छोड़ो, लेकिन आज इनका हृदय हमारे तुम्हारे लिए बहुत ही भाग रहा है, और इनके विचार बिल्कुल ही बदल गए हैं। ये जो कह रही है बिल्कुल सच है। आप हमारे साथ में चलो और हम उन महलों में चलेंगे। मैंने क्या कहा? चलो ना।
चलो। लेकिन बहन सुनो, अब हम पति और पत्नी दोनों मिल ही तो गए हैं, लेकिन सुनो बहन, मुझ पर तुम्हारा बड़ा उपकार रहा है। तुमने मेरी बड़ी सहायता की है, इसलिए बहन मैं तुमसे निवेदन करती हूँ, तुम्हारा उपकार और तुम्हारा ये एहसान मैं कभी जिंदगी में भी नहीं चुका पाऊंगी। तुम मेरे साथ चलो बहन।
बहन अगर तुम ये कहती हो, खैर मैंने तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा उपकार नहीं किया है, लेकिन ये भी सच है कि मैं आज अपनी आंखों से ये देखना चाहती हूँ कि आज तुम दोनों लोग मिल गए हो, तो आज इस महलों के बीच में मैं अपनी आंखों से तुम्हें राजा रानी बना करके देखना चाहती हूँ।
चलो
मेरे भैया। सदाब्रज और सारंगा को लेके जैसे ही वो जादूगरनी लड़की उस महलों में जब पहुंची है, दिन था और तब तक भगवान शंकर आ गए, शंकर महात्मा का भेष धारण करके, और सारंगा से एक बात कही, बेटी अरे कहे संत भगवान सुना दे ध्यान लली मेरी प्यारी, देख श्राप इंद्र ने तेरी कर डारी है। बर्बाद कर दी, लेकिन अब ये तरस हमसे देखा नहीं जाता है। धन्य धन्य तेरा प्रेम तो दोनों इन महलों में रहो। इतने शब्द कहने के बाद में महात्मा जो थे वो तो वहां से अंतर्ध्यान हो जाते, और दिन का समय था। दिन बीतने के बाद में
अरे दिन भर बीतो महल में जब हुई आई है रजनी
बातें चली उठी। बड़ी मुश्किल से तो एक रात मिल पाई। और जब प्रेम की बातें चली तो सदा ब्रज कहने लगे सारंगा
बताइए।
अरे कछ याद है तुम्हें?
हाँ हाँ याद क्यों नहीं है बताओ।
अरे पकड़ी कलाई नारी खीरे थव पकड़ी कलाई नारी की कोई लई पास बैठारी यारी पुरानी तुम करो
कोई लई पास बैठारी यारी पुरानी तुम करो
सरगा।
अरे क्या कहना चाहते हो कहो। लेकिन सुनो मुझे भी तुम्हारा इंतजार करते हुए काफी समय बीत गया है। तुम जो कहना चाहते हो मैं सब जानती हूँ, इसीलिए बड़ा खुश लग रहे हो तुम।
अरे कितने कितने दुख उठाए लेकिन तुम्हें कैसे याद है?
देख रही हूँ
जब बार पे भैंस चुंगा मत थे।
देखा था भैंस चराती में देखा था ना?
हाँ हाँ देखा था।
और तुम्हारा हार जो आता ना वो कम वृक्ष पे चील ले गई थी?
हाँ हाँ ले गई थी।
लेकिन तुम्हारे हार उतारने के बदले में हमने तुमसे कई अतीत मानो तुमने हमसे कई दिखा कई थी बताए हमको
बताओ
याद ना आएगा हार के एहसान में संग काटेंगे के बाद में और सारंगा को जब एक रात मिली है सदा ब्रज के पास में वो लेटी है और जब सवेरो हो तो जब मतलब सवेरो हो
तो भोर भावोजी बीतिया कहे रे मेरे प्यारे
सदाव्रज।
हाँ बोलिए।
मुझे तुम्हारा बरसों से इंतजार था।
बिल्कुल हमें भी इंतजार था तुम्हारा।
मैंने तुमसे वादा किया था ना।
हमने भी तो किया था।
आज वो वचन पूरा हो गया है।
अरे हो गया ना।
मैं भी बड़ी खुश हूँ।
मैं भी बड़ा खुश हूँ।
तो सुनो।
सुनाइए।
अरे वचन तुम्हारो पूरो कारो अरे मेरे प्यारे वचन तुम्हारो पूरो करो अरे मेरे प्यारे अब रह न सकूं तुम्हारे साथ जी
क्या कहा तुमने
हाँ, जो मैंने कहा है ना अभी सुना है तुमने
नहीं नहीं ऐसा ना बोलो
मैंने तुम्हें वचन दिया वादा किया था वो आज वादा पूरा हो गया है, अब मुझे आज्ञा दो सदा ब्रज।
सारंगा, क्या तुम झूठ कह रही हो?
नहीं नहीं, जो मैंने आपसे कहा है बिल्कुल सत्य कहा है।
नहीं नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, मैं ये तो मान ही नहीं सकता कि आप सत्य कह रही हैं।
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
सदा ब्रज, मैं तुमको कैसे विश्वास दिलाऊं, कैसे समझाऊं, अब आप ही बताएं।
सारंगा, बरसों से हम और तुम इधर उधर भटकते रहे, घूमते रहे, दर दर की ठोकरें खाते रहे, और आज जब हमारी आस पूरी हुई तो तुम ये क्या कह रही हो? ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते हैं, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए। जरा सोचो, तुम हमें छोड़ के जाओगी कहाँ? कहाँ जाओगी तुम?
यदि ना कहूँ तो फिर क्या करूँ?
लेकिन सारंगा,
बताओ,
तुम्हें नहीं मालूम है को
सुनिए सारंगा, मेरी बात को सुन लीजिए। अरे पूरा वचन हो गया, लेकिन उस रात से हमें कोई मतलब नहीं था। अगर हम ये पहले जानते तो उस रात की हम बात नहीं करते, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ।
मैंने जो कहा है,
मैंने कहा
क्यों नहीं मानते हो सदा?
वो भी सुन लीजिए, मेरी भी सुन लीजिए सारंगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ।
सुनो, अरे पूरो बचना तुम्हारो भाई, अरे मेरे प्यारे आवा छोड़े।
सारंगा का हाथ पकड़े खड़ा है और विनती कर रहा है, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, जवाब दिया सारंगा तुम हमें छोड़ करके मत जाओ। लेकिन सारंगा वही बात कह रही है, जवाब दिया सदा ब्रज हमें तुम जाने दो क्योंकि मेरा पूरा समय हो गया है, अब हम तुम्हारे पास में एक पल भी नहीं रह सकते। और सदा ब्रज सारंगा का हाथ पकड़े है, लेकिन सारंगा की आत्मा उसके शरीर से निकल करके इंद्र लोक के लिए चली जाती हैं। और इधर सदा ब्रज के हाथ में जो सारंगा की लहस रह जाती है वो जमीन पर गिर पड़ती है, और जैसे ही लहस को गिरता हुआ देख करके सदा ब्रज भी एकदम से उसकी लहस पर गिर पड़ता है, खत्म हो जाता है। और उधर वो जादूगरनी लड़की आती है, तब तक सारंगा का पति भी आ जाता है, और जब पति आ जाता है अपने पत्नी को देख करके रोने लगा, लेकिन जादूगरनी लड़की उसे समझाती है, मेरी बात को मानो, वो उसे समझा रही है। वो पति पत्नी के रूप में वहां से चले जाते हैं। समझाने के बाद में अब देखते हैं राठौर कैसेट में आगे फिर क्या होता है। ये कहानी पूर्ण हुई भैया, अब आगे हम दर्शाएंगे रंभा ने प्यार किया।